अगले कवि का नाम है त्रिलोचन शास्त्री। प्रश्न, त्रिलोचन शास्त्री का जीवन परिचय देते हुए उनके काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, आधुनिक हिंदी काव्य जगत में श्री त्रिलोचन शास्त्री का नाम अग्रणी है। वे नई कविता के समस्त महान कवियों में अग्रणीय एवं प्रेरणा स्रोत कवि माने जाते हैं। सन 1954 में नई कविता के काव्यकारों की मूल विशेषता यह रही है कि वे जीवन को बड़े ही गंभीरता पूर्वक देखते हैं, पढ़ते हैं, आत्मसात करते हैं, बुद्धि एवं विवेक के कसौटी पर कसते हैं, तत्पश्चात उसी मूल भाव को प्रस्तुत करते हैं। श्री त्रिलोचन शास्त्री एक पारखी कवि हैं। वे जीवन के झंझावतों को बड़े ही उत्कृष्ट भाव से अध्ययन करते हैं। उनकी कविता में मात्र कला कला के लिए नहीं, अपितु कला जीवन के लिए के सिद्धांत पूर्णतः पाए जाते हैं। यदि हम उनकी कविताओं का अध्ययन करें तो यह प्रतीत होता है कि शास्त्री जी की काव्यगत विशेषता छायावादियों, रसवादियों, प्रयोगवादियों एवं प्रगतिवादियों से अलग हटकर यथार्थवादियों एवं दीनहीन मजदूर दूर गरीब बेबस इंसानों के लिए जीवन का प्रतिरूप है। नई कविता के कवियों की भांति आप में भी ब्रह्मवादियों के विरुद्ध एक खुला संघर्ष है। कविवर श्री त्रिलोचन शास्त्री के काव्यों में नवीनता का प्रारूप है। उन्होंने आम जनमानस के मानसिक द्वंद्वों का अध्ययन गंभीरता से किया और समाज को एक नया विकास प्रदान करने का प्रयत्न किया। आपने अपनी एक कविता ध्वनि ग्राहक में अपने काव्य को मूल परिभाषा एवं भाव प्रस्तुत करते हुए लिखा है, लड़ता हुआ समाज, नई आशा अभिलाषा, नए चित्र के साथ नई देता हूँ भाषा। वर्तमान समाज में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक भीषण संघर्ष व्याप्त है, यह कवि का विचार है। इस भीषण संघर्ष के बाद नए आशा का और अभिलाषा का आगमन होगा। अतः वे सदा ही इस बात का पर्यंत प्रयास करते हैं कि समाज को सदैव कुछ नया प्रदान करें। इसी अभिलाषा से वे काव्य के माध्यम से एक नवीन क्रांति के माध्यम से एक सुंदर एवं सुसंपन्न श्रेष्ठ समाज की स्थापना की जाए, इस पर विचार करते हैं। श्री शास्त्री मात्र नई कविता के ही प्रणेता नहीं, साथ ही साथ वे एक समाज की संरचना एवं नए विकास के भी प्रेरणा स्रोत हैं। किंतु उनका मन उद्विग्न रहता है, क्योंकि जो कुछ भी विकास समाज में परिलक्षित होता है उसका लाभ मात्र चंद सख्त जनों की चेरी बन जाती है और दीन हीन निर्धन गरीब बेबस मजदूर एवं मजलूमों तक उसका किरण तक नहीं पहुंचने पाता है। जैसा कि उन्होंने लिखा है, राष्ट्रों के स्वार्थ और कूटनीति पूंजीपतियों की चालें वह समझे तो कैसे, अनपढ़ देहाती रेल तार से बहुत दूर याई का बसिंदा। निश्चय ही श्री शास्त्री जी ने जीवन का अध्ययन किया है और उन्होंने पाया कि संसार में हर जीव अकेला है। ये जो हमारे संबंध हैं उसका आधार प्रेम नहीं अपितु स्वार्थ है। संसार के समस्त संबंध स्वार्थ पर आधारित हैं, अन्यथा हर व्यक्ति का अपना जीवन है, अपना राग है, अपनी आकांक्षा है। वे मानते हैं कि जीवन का एक पीड़ा है जिससे संघर्ष करना पड़ता है। जैसा कि श्री शास्त्री जी अपनी कविता तुम्हें सौंपता हूँ में लिखा है, जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी। श्री शास्त्री नई कविता के प्रति समर्पित का व्यवहार करते हैं। वे सदैव नई भावना को उद्वेलित करते हैं। उनका विचार है कि नवीनता की जीवन है जो अपने में नवीनता को छोड़ दिया, निसंदेह उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। फलतः उन्होंने अपनी काव्य नवीनता की खोज की है। जैसा कि वे लिखते हैं, पहले का बसा गांव उजड़ा सा पाया था, उसमें बहुत बहुत बातें हुई, शायद कोई बात छूट नहीं सकी, इतनी बातें हुई। श्री शास्त्री छायावादी कवियों की भांति पलायनवादी कवि नहीं हैं, अपितु वे जीवन के संघर्षों के मध्य जूझकर एक नए मार्ग का दिग्दर्शन कराना चाहते हैं। जीवन की सच्चाइयों से मुख नहीं मोड़ा जा सकता है, वे लिखते हैं, मानव की सभ्यता तुम्हारे ही खुरदरे हाथों में नया रूप पाती है और यह नया रूप आने वाले कल के किसी नए रूप की भूमिका है और यह भूमिका भविष्य का संविधान बनाती है। श्री शास्त्री मजदूरों, किसानों, आदिम समाज से लेकर वर्तमान समाज तक के विकास का गहन अध्ययन किए हैं। उनका विचार है कि विश्व के समस्त विकास मजदूरों, किसानों, मेहनतकश लोगों के द्वारा ही संभव हुआ है। उन्होंने सामाजिक जटिलताएं, भिन्न राजनीतिक गतिविधियां, आर्थिक शोषण को भयंकर घोड़दौड़, सांस्कृतिक विघटन एवं बिखराव, नैतिक मूल्यों में आई कमी पर गंभीरता से विचार किए। उन्होंने नैतिकता के मूल्यों का श्वास कारणों के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भूले हो जाती हैं, भूले ये अगर वह ठीक हो जाया करें, किसी तरह की दी जाए तो सारी पृथ्वी पर शांति खेलने लगे, शांति पाठ जीवन का सत्य हो, नहीं तो पाठ पाठ ही रहेगा, कभी शांति का स्वरूप नहीं दिखेगा। यही तो एक बाधा है, शांति के लिए लड़ाई होती है, लड़ने वाले कहते हैं। इस प्रकार श्री शास्त्री नई कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से आम आदमी के भावनाओं को क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया है। ताप से ताए हुए दिन, काव्य में उन्होंने अस्तित्व के संघर्ष को प्रस्तुत किया है। काव्यगत विशेषताओं के दृष्टि से श्री शास्त्री जी नई कविता के अनुरूप भाषा एवं शैली का प्रस्तुतिकरण किया है। भाषा की दृष्टि से श्री शास्त्री आम आदमी की भाषा को काव्य की भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। उनका विचार रहा है कि काव्य की भाषा इतनी क्लिष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नई कविता एक आंदोलन है। वे बैठक में बोलते हुए कहा, इस आंदोलन को हमें यदि जन जन पहुंचाना है तो हमें काव्य रचना भी जन भाषा में करनी होगी। उन्होंने संस्कृत के तत्सम, तद्भव, हिंदी, खड़ी बोली, आंचलिक क्षेत्रीय, उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी भाषा के प्रयोग किए हैं। उनकी मिली जुली भाषा का एक उदाहरण है सिफारिश से सेवा से गला सत्य का कभी न घोटूंगा, मेवा से वरम ब्रूही न कहूंगा और न चुप रहने का। यहाँ सिफारिश, घोटूंगा, वरम ब्रूही जैसे शब्द अलग अलग भाषाओं से चयनित किया है। ऐसे एक और उदाहरण, अनपढ़ देहाती रेल तार से बहुत दूर, हिसाई का वासिंदा व भोरई। यहाँ रेल, हिसाई, वासिंदा आदि शब्द विभिन्न भाषाओं एवं आंचलिक भाषा के शब्द हैं। शैली के दृष्टि से श्री त्रिलोचन शास्त्री निसंदेह रूप से नई कविताओं के अन्य कवियों की भांति एक नवीन विचारधारा के पोषक रहे हैं। वे कला को जीवन के लिए सिद्धांत रूप में विश्वास रखते हैं। उनकी कविता में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के साथ साथ अस्तित्ववाद, व्यवहारवाद, यथार्थवाद का सुंदर सम्मिश्रण हुआ है। विज्ञानवाद, भावनात्मक, विचारात्मक, व्याख्यात्मक, गवेषणात्मक शैली का प्रयोग किया है। छंदों से मुक्तक छंद का पूर्ण प्रयोग हुआ है। यद्यपि नई कविता में अलंकार का प्रयोग रीतिकालीन कवियों के भांति तो नहीं होता है, किंतु शास्त्री जी अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, मानवीकरण आदि अलंकार का प्रयोग किए हैं। नई कविता में श्रृंगार रस का कम किंतु करुण रस, विभत्स, अद्भुत रस का प्रयोग होता है। श्री शास्त्री जी ने भी इन्हीं रसों का प्रयोग किया है। त्रिलोचन शास्त्री की पहली कविता का शीर्षक है ध्वनि ग्राहक, ध्वनि ग्राहक हूँ मैं, समाज में उठने वाली ध्वनियाँ पकड़ लिया करता हूँ। इस पर कोई अगर चिढ़े तो उसकी वृद्धि कहीं है खोई, कहना यही पड़ेगा। अगर न हो हरियाली कहाँ दिखा सकता हूँ, फिर आँखों पर मेरी चश्मा हरा नहीं है। यह नवीन अय्यारी मुझे पसंद नहीं है, जो इसकी तैयारी करते हों वे करें। अगर कोठरी अंधेरी है तो उसे अंधेरी समझने कहने का मुझको है अधिकार। सिफारिश से सेवा से गला सत्य का कभी न घोटूंगा, मेवा से ब्रह्म ब्रूही कहूँगा और न चुप रहने का। लड़ता हुआ समाज नई आशा अभिलाषा, नए चित्र के साथ नई देता हूँ भाषा। इस कविता का की व्याख्या एवं विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रस्तुत कविता ध्वनि ग्राहक श्री त्रिलोचन शास्त्री के काव्य दिगंत से प्रस्तुत की गई है। यह कविता प्रतीकात्मक है। प्रस्तुत काव्य में श्री शास्त्री जी प्रथम पुरुष की भांति समाज के नैतिकता को प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि समाज परिवर्तनशील है, देश काल इस परिस्थिति और वातावरण के अनुरूप समाज में नए विचार प्रस्तुत होते रहते हैं। कवि का कथन है कि समाज में उठने वाले हर नए विचार को वे ग्रहण कर उस पर विचार करते हैं। यदि उस विचार को ग्रहण करने पर किसी को पसंद नहीं तो वे क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर विचार श्रृंगारिक नहीं होते। समाज में अनेकानेक द्वंद हैं और उन द्वंद्वों को भी स्वीकार करना पड़ता है। एक कहावत है कि सावन के अंधे को सर्वत्र हरियाली ही नजर आती है, किंतु मैंने कोई हरा चश्मा नहीं पहन रखा है। मेरी आंखें उस हकीकत को भी देखती हैं जो समाज में घटित हो रही हैं। श्री शास्त्री दिखावटीपन हरापन को आयारी मानते हैं, दिखावा उन्हें पसंद नहीं है। वे यथार्थ का सम्मान करते हैं, जो सच्चाई उससे मैं स्वीकार करता हूँ। यदि अंधेरा है तो अधिकार के साथ कहता हूँ कि अंधेरा है। वर्तमान समाज स्वार्थ पूर्ति हेतु अनेक रास्ते अपनाए हैं। कोई सिफारिश करता है, कोई सेवा करता है, किंतु इस सिफारिश और सेवा से प्रभावित होकर सत्य को अस्वीकार करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है और न ही कभी सत्य को मिटाऊंगा। असत्य को कहकर सेवा प्राप्त करने की मेरा इच्छा कभी नहीं थी और न है। समाज में सदा वैचारिक नवीन संघर्ष होता रहा है। मैं हमेशा नई आशा और अभिलाषा के साथ कार्य करता हूँ तथा प्रयत्न करता हूँ कि नए समाज की संरचना के विचार, नई तकनीक एवं नई भाषा की आवश्यकता जिसे मैं प्रयत्न कर प्रदान कर सकूँ। विशेषताएं। पहली, ध्वनि ग्राहक काव्य एक क्रांतिकारी काव्य है जिसमें सत्य को स्वीकार करने का उद्बोधन प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, तकनीक एवं शैली दोनों ही नए हैं। तीसरा, भाषा मिली जुली है। चौथा, शांत रस का प्रयोग हुआ है। त्रिलोचन शास्त्री की अगली कविता का शीर्षक है परिचय की गांठ। यूं ही कुछ मुस्करा कर तुमने परिचय की यह गांठ लगा दी। था पथ पर मैं भूला भूला, फूल उपेक्षित कोई भूला। जाने कौन लहर थी उस दिन, तुमने अपनी याद जगा दी। कभी कभी यूं ही जाता है, गीत कहीं कोई गाता है। गूंज किसी उर में उठती है, तुमने वही धार उमगा दी। जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा। तुमने अनजाने वह पीड़ा, छवि के सर से दूर भगा दी। इस कविता की व्याख्या एवं विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रस्तुत काव्य परिचय की गांठ श्री त्रिलोचन शास्त्री के तुम्हें सौंपता हूँ से उद्धृत किया गया है। प्रस्तुत काव्य में श्री शास्त्री ने मानव जीवन के द्वंद्वात्मक झंझावतों का चित्रण किया है। उनका विचार है कि समाज में मनुष्य परिचय की गांठ में बंधकर समस्याओं से घिर जाता है और कभी कभी अनेक कष्टों दुखों का शिकार भी बन जाता है। साथ दूसरी ओर यह परिचय की गांठ अनेक समस्याओं को दूर भी कर देती है, प्रस्तर से जीवन में हरियाली ला देता है। व्याख्या। प्रस्तुत काव्य में श्री त्रिलोचन शास्त्री जी कहते हैं कि समाज ने प्रेम भाव और मुस्कुराकर तुमने परिचय की गांठ लगा दी, अर्थात एक नवीन परिचय प्रेम के साथ विकसित हुआ। उनका विचार है कि मैं सब कुछ भूला कर एक अनजान पथ पर था और मुझ में कोई लालसा थी न कोई भावना, पूर्णतः उपेक्षित था। समाज रूपी बाग में कोई फूल अर्थात कोई व्यक्ति तो उपेक्षित सा जीवन बिता रहा था, कोई पूर्णतः विकसित, किंतु तुमने मेरे हृदय न जाने कैसे एक नवीन ज्योति जला दी कि मैं समाज के बारे में सोचने लगा। श्री शास्त्री जी कहते हैं कि कब क्या हो जाए इसका निश्चित समय नहीं है, कभी कभी अपने आप अनायास कोई भावना कहीं और उठती है, कोई गीत गाता है किंतु उसका प्रभाव कहीं और पड़ता है, किंतु उस गीत का प्रभाव मेरे हृदय में एक नई शक्ति, एक नया उत्साह, एक नई उमंग भर दी। यह सत्य है कि जीवन कष्ट दुख पीड़ा वेदना दर्द से ओतप्रोत है और वह स्थिर भाव से जमी हुई है जो प्रस्तर के समान निस्तरंग है, जहाँ कोई आनंद नहीं है किंतु तुम्हारे परिचय की गांठ ने, तुम्हारी मुस्कुराहट ने उस जड़ता निस्तरंग पाषाण जीवन में एक नई शक्ति एवं ओज भर दी, जिससे जीवन को समझने की शक्ति मिली। कवि का मूल भाव है कि मानव जीवन अनेकानेक संघर्षों एवं झंझावतों से भरी पूरी है। यदि ऐसा जीवन में कोई मित्र जिससे हमारा परिचय हो, यदि कोई सहायता प्रदान कर दे तो निश्चय निस्तरंग जीवन को हरियाली पूर्ण बनाया जा सकता है। विशेषताएं। पहला, यह मात्रिक छंद में लिखा गया है, प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं हैं। दूसरा, अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तीसरा, भाषा शुद्ध खड़ी बोली है किंतु उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। चौथा, शैली व्याख्यात्मक एवं विवेचनात्मक है। त्रिलोचन शास्त्री की अगली कविता का शीर्षक है भोरई केवट के घर। प्रस्तुत कविता भोरई केवट के घर श्री त्रिलोचन शास्त्री के धरती काव्य से उद्धृत किया गया है, जिसमें कवि ने भोरई केवट जो एक मेहनत कश मजदूर है उसके जीवन की झलक प्रस्तुत की है। यद्यपि ग्राम में हर वस्तु तो बदल गई किंतु वहाँ के गरीबों का जीवन और भी अधिक दुखदायी बन गया। कविता इस प्रकार है, भोरई केवट के घर मैं गया हुआ था बहुत दिन पर, बाहर से बहुत दिनों बाद गांव आया था, पहले का बसा गांव उजड़ा सा पाया था, उसमें बहुत बहुत बातें हुई, शायद कोई बात छूट नहीं सकी, इतने बातें हुई भीतर की प्राण या वायु सब निकाल कर एक बात उसने कही, जीवन की पीड़ा भरी, बाबू इस महंगी के मारे किसी तरह अब तो और नहीं जिया जाता, और कब तक चलेगी लड़ाई यह, ऐसा जान पड़ा जैसे भोरई निरुपाय और असहाय आकंठ दुख के अभाव के समुद्र में पड़ा हुआ उसकी विकट लहरों के थपेड़े सह रहा था, इस अकारण पीड़ा का भुरई उपचार कौन सा करता, वह तो उसे पूर्व जन्म का प्रसाद कहता था, राष्ट्रों के स्वार्थ और कूटनीति पूंजीपतियों की चालें वह समझे तो कैसे, अनपढ़ देहाती रेल तार से बहुत दूर हियाई का वासिंदा वह भुरई। कविता की व्याख्या एवं विशेषताएं इस प्रकार से हैं, भोरई केवट के घर श्री त्रिलोचन शास्त्री की कविता धरती से उद्धृत की गई है, जिसमें श्री शास्त्री ने धरती के पुत्र भोरई केवट के माध्यम से उन समस्त गरीबों के जीवन का दिग्दर्शन कराया है जो ग्रामों में रहते हैं। श्री शास्त्री जी कहते हैं कि भोरई केवट के घर वे बहुत दिनों के बाद गए। कवि जी कहते हैं कि वे बहुत दिनों तक नगरीय जीवन बिताकर गांव गए हुए थे और उन्होंने पाया था कि समूचा गांव ही उजड़ गया है। वहां अनेक परिवर्तन हो गए थे कि एक बार गांव को पहचानना मुश्किल हो गया था। इतनी बातें बदल चुकी थी कि शायद ही कोई बात बची रही हो जहां भौतिक परिवर्तन नहीं हुए हों। कवि ने भोरई केवट के माध्यम से गांव की सभी बातों की जानकारी प्राप्त की। भोरई केवट आह भरते हुए कहा कि यद्यपि बड़ा ही परिवर्तन हुआ किंतु जीवन पहले से भी अधिक बदतर हो गया है। जीवन में पीड़ा ही पीड़ा व्याप्त है। गरीबी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। महंगाई इतनी अधिक बढ़ गई है कि अब तो जीने की कोई राह ही नहीं दिखाई पड़ रही है। न जाने कब तक यह गरीबी की भयंकर लड़ाई चलती रहेगी। भोरई की दुखद कहानी सुनकर कवि का हृदय द्रवित हो जाता है। वो विचार करने लगता है कि निसंदेह भोरई गरीबी एवं संघर्षों से बेजान एवं लाचार हो चुका है। वह की कर्तव्य विमूढ़ हो चुका है। वह पूर्णतः असहाय एवं दुख से ओतप्रोत हो चुका है। गरीबी में जूझते जूझते थक गया है। अभाव के समुद्र में वह परम कष्ट सह रहा है और उसे यह विश्वास हो गया कि वह इस महासमुद्र से कभी बाहर नहीं निकल सकता है। कवि शास्त्री जी निर्मेश भाव से कहते हैं कि भोरई के कष्ट दुख पीड़ा वेदना का कोई भी उपचार नहीं है। वह स्वयं ही इसे पूर्व जन्म का प्रसाद कहते हैं। कवि को विस्मय होता है कि यही सभी गरीब बेबस लाचार मजदूर व मजलूमों की कहानी है। वे कष्ट सहते हैं और उसे पूर्व जन्म का प्रसाद कहते हैं। अंधविश्वास से बचकर हताश जीवन को व्यतीत करने को बाध्य हो जाते हैं। कवि जी कहते हैं कि इस गरीब भोरई को जानने के लिए उस जमाने के राजनीतिक दांवपेच कूटनीतिक चालबाजियां पूंजीपतियों की कुचालें तो समझ में नहीं आ सकती। वह तो अपनी गरीबी को पूर्व जन्म का प्रसाद मानकर सहता रहता है क्योंकि वह एक अनपढ़ व्यक्ति है। आज के विकास रेल तार डाक आदि से बहुत दूर है। विचार मात्र कष्ट से पैदा हुआ, कष्ट में जीवन जिया और घोर कष्ट में जी रहा है क्योंकि वह एक ग्रामीण अनपढ़ और अज्ञान है। विशेषताएं मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। दूसरा विवेचनात्मक एवं भावात्मक शैली है। तीसरा करुणा रस एवं शांत रस का प्रयोग हुआ है। चौथा भाषा खड़ी हिंदी बोली एवं आंचलिक है।